अरे नींद आने से थकने से उनके आभूषणों का उनको ज्ञान नहीं है। बहुत सी ऐसी स्त्रियां उनको देखा कि एक एक के आभूषण एक एक में उलझे हुए पड़े हैं। हनुमान जी महाराज उनके पास में एक एक को देखते हैं। व्यावृत दर्शना दामा किशोरिया एवं वाहिता अकुंडल धराश्चान्या विचित्र मृदित सृज है। बहुतों की मालाएं हैं, वो मालाएं सोने के कारण से मुरझा गई है और कई कई की ऐसी मालाएं हैं जो कि बहुत विलक्षण फूल जो हर कहीं मिलते नहीं है, उन फूलों से बनी हुई मालाएं उन स्त्रियों ने पहना है। तो ऐसा लगता है कि मानो ये हंसनियां हो, मानो ये अप्सराएं हो, मानो ये दिव्य लोक से आई हुई हो, क्योंकि इस लोक के ये फूल नहीं, इस लोक की ये चीजें नहीं। हनुमान जी महाराज उनको देखते हैं। हनुमान जी महाराज ने देखा कि ये अपने शरीरों में जहाँ चंदन लगाए हैं, वो चंदन लगा लगा करके बड़ी शीतलता का अनुभव कर रहे हैं। ऊपरी ऊपरी वक्त्राणाम विधूयन्ते पुनः पुनः, और भाई कभी कोई कपड़ा अपने पर ओढ़ भी लेती है तो अभी मुंह से इतनी श्वास निकलती है, नाक से सांस निकलती है, वो कपड़ा डाल दिया फिर कपड़ा हट जाता है, कपड़ा ऊपर जाता है फिर वापिस आता है, सांस से उनका कपड़ा ऊपर नीचे आता रहता है, ऐसी लंबी लंबी वो श्वास लेते हैं। हनुमान जी महाराज उनके सूंघते हैं कि इनके अंदर मदिरा की गंध आ रही है और मदिरा की गंध के कारण से सारी शाला है ये मदिरा के गंध से गंधवान हो चुकी है। रावणानन संकाश्च काश्चित रावणी ओषित है मुखानी च सब पत्नी नाम उपाजिघ्रन पुनः पुनः। भाई उस समय में बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जिनको पान के कारण से होश नहीं रहा, अतएव किसी के पैर का सहारा लगाकर उसको तकिया मानकर सो गई, किसी का पैर है उसका सहारा लगा लिया, कोई किसी के सिर के ऊपर सहारा लगाए हुए, कोई किसी के पेट के ऊपर सहारा लगाई हुई, ये सब स्त्रियां इस प्रकार से पड़ी है। अश्वतंत्रा पत्नी नाम सपत्नी नाम प्रियम एवं चरस तदा, इस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने सब स्त्रियों को अस्त व्यस्त हालत में देखा और वही देखा कि भाई किसी का वस्त्र कैसा ही है, किसी का आभूषण कैसा ही है और किसी की करवट कैसी ली हुई है, परस्पर निविष्टांग्रिय है, एक दूसरे के चरणों पर एक दूसरी पड़ी हुई है, इनको कुछ भी होश नहीं है कि हम कहाँ सो रही है, कहाँ हम लोग पड़ी है। लता नाम माधवे मासी, जिस प्रकार से जो है मधु मास में चैत्र मास में लताओं का जब उद्गम होता है वे लताएं एक साथ उलझ जाती हैं, इस प्रकार से वे स्त्रियां वहां पर पड़ी हुई उलझी हुई सी पड़ी है। अब इनमें एक एक के पास में जा करके हनुमान जी महाराज सीता को जो कि देखी कभी है नहीं, उस सीता के पास रात्रि के समय में सावधानी से जाते हैं। वहां चलते चलते हनुमान जी महाराज कभी उनको एक पैर पर ही खड़ा रहना पड़ता है, कभी हनुमान जी महाराज उन दो के चरणों के नीचे से निकलना पड़ता है, कहीं उनको फदक करके निकलना पड़ता है, पर कहीं पर भी उनको अपनी आवाज किसी को पता न चले, इस ढंग से हनुमान जी महाराज देख रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े राजर्षियों की कन्याएं आई हुई हैं, दैत्यों की कन्या आई हुई है, ब्राह्मणों की कन्याएं हैं, गंधर्वीणाम कन्या गंधर्वियों की कन्या आई हुई है और कुछ रावण ने बहुत सी स्त्रियां युद्ध के अंदर हर ली है, वे सब स्त्रियां वहां पर उस शाला के अंदर सोई हुई है। इस प्रकार से हनुमान जी ने सबको देखा लेकिन सीता जी को नहीं देखा। सीता जी को नहीं देखने के कारण से हनुमान जी के मन में बड़ी आकुलता व्याकुलता हो गई। हनुमान जी ने देखा कि ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो कुलीन न हो, ऐसी कोई स्त्री नहीं है कि जो हीन रूप वाली हो, ऐसी कोई स्त्री नहीं है कि जो श्रेष्ठ न हो, सब श्रेष्ठ स्त्रियां हैं, बड़ी कुलीन है, बड़ी हीन रूप वाली है और बड़ी श्रेष्ठ है, इनके वस्त्र वगैरह भी बड़े श्रेष्ठ हैं, परंतु सीता मुझे यहाँ दिखाई नहीं दी। भार्या भव तस्य न हीन सत्वा न चापि कांतस्य न कामनीय बभूव बुद्धिस्तु हरीश्वरस्य यदि दृशि राघव धर्म पत्नी इनके अंदर राघव धर्म पत्नी सीता के कैसे दर्शन हो, कैसे पहचान है, ये तो स्त्रियां हमको मालूम नहीं दे रही है कि सीता इनमें से कोई हो सकती है। सीता ऐसे कैसे हो सकती है? ओहो, इस लंकेश्वर रावण ने बड़ा भारी अपने लिए एक तरह से कष्ट का काम किया है और इसका फल इसको बड़ा भयंकर मिलने वाला है। उन स्त्रियों के वहां पर एक बड़ा सुंदर सोने का स्थान देखा, सोने का पलंग देखा। उस पलंग को देखा कि वो रत्नों से भी भूषित है और हाथी दांत का बना हुआ और वो तरह तरह की सोने की कारीगरी की हुई वेदूरी मणियों से विभूषित बहुत ही महंगा वो सोने का जो पलंग है उस पलंग के ऊपर वो रावण पड़ा हुआ था। और अब रावण के लिए बताते हैं उस पलंग के चारों तरफ बड़ी सुगंधित सुगंधित मालाएं मालाएं थी, उन मालाओं में बड़ी सुगंधि आ रही थी और वहां पर एक सफेद छत्र लगा हुआ था। वो छत्र ऐसा था मानो चंद्रमा ही उदित हो गया हो। उस छत्र के अंदर सैकड़ों अंदर नीचे ताड़ियां लगी हुई थी। हनुमान जी महाराज उस छत्र के नीचे जाते हैं और जो वो विशाल छत्र उसकी जो ताड़ियां हैं उन ताड़ियों के अंदर से देखते हैं कि कहीं यहां तो सीता को नहीं रख दिया है। और वे पलंग के नीचे खूब आराम से घूमते हैं कि पलंग के नीचे तो सीता नहीं है। और उसके पास में बहुत बड़े बड़े पलंग रखे हुए हैं। अशोक वृक्ष का जो फल है उसकी जो गुठली होती है उसका जो मणिया मणिया अशोक माला विदितम माने उस फल की जो गुठलियां हैं उनकी माला और अशोक वृक्ष के फूलों की माला ये उसके शरीर के ऊपर पहनी हुई है। और विविध प्रकार के जो गंध है वो वहां पर आ रही है। बहुत लंबा चौड़ा उसका वो पलंग है, उसके ऊपर बहुत ही सुंदर कपड़ा पहनाया हुआ है। कपड़ा भी कैसा है भाई, आविका जिन समृतम माने भेड़ का जो चमड़ा होता है भेड़ के चमड़े का उसके ऊपर ये बिछाया हुआ है। और समंता दुप शोभितम तरह तरह की सुंदर सुंदर डोरियों से गुथा हुआ डोरियों से गुथी हुई श्रेष्ठ मालाएं वो मालाएं चारों तरफ वहां पर सुशोभित हो रही हैं। वहां उस पलंग के ऊपर आकाश में मेघ के समान काले मेघ के समान और उज्ज्वलित कुंडल पहना हुआ लाल लाल जिसकी आंखें हैं और बड़ी बड़ी जिसकी भुजा है ऐसे सफेद वस्त्र पहना हुआ रावण पड़ा हुआ लंबी लंबी श्वास ले रहा है। वो रावण चंदन का लाल चंदन का लेप करने के कारण से काले शरीर के अंदर ललाई को धारण किया हुआ ऐसा लगता है मानो वर्षा के अंदर काले 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 बादल के साथ में संध्या के लाल लाल बादल मिल गए हों। उसके बाद उस रावण को उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर मंदराचल पर्वत रहता है वो सो रहा हो इस प्रकार से रावण इस पलंग के ऊपर सो रहा है। इतनी देर तक ये अपने अंतःपुर में तरह तरह के खेल खेल रहा था, मनोविनोद कर रहा था, मनोरंजनों के साधनों में मस्त था। अब ये इन सब स्त्रियों के बीच के अंदर मदिरा पान करके ये राक्षस राज यहाँ पर पड़ा हुआ है। उसकी लंबी लंबी श्वास चल रही है। हनुमान जी परम उद्विग्न हो गए, ये वो रावण है, कितना ये बलवान है। हनुमान जी महाराज फिर फुदक करके एक मकान के ऊपर की जगह है वहां पर बैठे बैठे वेदिकांतरम आश्रित है जिस मकान के अंदर एक पेड़ियों का रास्ता था उस पेड़ियों के ऊपर रास्ते पर जाकर बैठते हैं। क्या पता किस समय कौन कब क्या जग जाए तो मुझे निकलने का रास्ता कैसे मिलेगा। अतएव हनुमान जी वहां पर दुबके हुए बैठे हुए हैं। हनुमान जी देखते हैं कि ये राक्षस राज बड़ा मस्त खा पी करके मस्त हुआ हुआ है और इसके शरीर के अंदर से सुगंध आ रही है। उसने देखा कि इसके दोनों भुजाएं हैं, ये दोनों भुजाएं एरावत और एरावत के दांत के लगने के घाव से बड़े पुष्ट हुई हुई है। देखो रावण सोता था तब दो भुजा ही रखता था, रावण जब युद्ध आदि करता था या विशेष कार्य पड़ता था तब वो 20 भुजा रख लेता था। अकस्मात भुजा उसकी प्रकट हो जाती थी, नहीं तो प्राय दो भुजा में ही रहता था और एक ही सिर से रहता था। वहां उसकी दोनों भुजाएं देखी गईं और कहा कि ये वो भुजाएं हैं जिन भुजाओं से लड़ते लड़ते, शस्त्रों से लड़ते लड़ते जो भुजाएं पीन हो गई, माने मोटी हो गई हैं, सुसंगठित हो गई हैं। रावण के नखों के अंगूठे देखे गए, रावण के अंगुलियां देखी गईं, वो अंगुलियों को यूं फैलाया हुआ यूं पड़ा है, ऐसा लगता है कि कोई पांच फण वाला सांप यहाँ पर दो, एक तो इधर इस बिल से निकला हुआ, एक इधर इस बिल से निकला हुआ, मानो पांच फण वाला सांप हो। और सशक्त कल्पेन खरगोश के खून के जैसा लाल लाल जो चंदन है, उस चंदन के द्वारा वो जो है बहुत ही श्रेष्ठ अलंकार के समान मालूम दे रहा था। उसकी भुजाओं पर उसका अलंकार किया गया था। यक्ष पन्नग गंधर्व देव दानव इनके मानो ये भुजाओं ऐसा वो मालूम दे रहा था। मंदराचल के पर्वत के किसी गुफा के अंदर कोई बड़ा भारी, दो बड़े भारी सांप सो रहे हो, ऐसा वो रावण दिखाई, ऐसे रावण की भुजाएं दिखाई दे रही थी। और वहां पर तरह तरह के भोजन थे, वो भोजनों के रस से बने हुए पदार्थ, सुगंधित पदार्थ, वहां पर उनकी सुगंध आ रही थी। और बताते हैं कि उस रावण के खर्राटों से पूरा मकान भर गया था, वो पूरा भरपूर खर्राटा लेता था, उसके खर्राटे से पूरा मकान भरा हुआ था। पूरयन्नेव तद्गृहम, और जहां पर वो सोया हुआ था वहां पर मोतियों की मालाओं से एक बड़ा अच्छा श्रृंगार किया हुआ था। उसके वक्षस्थल के ऊपर, उसका विशाल वक्षस्थल, उसके ऊपर भी तरह तरह का श्रृंगार किया गया था। बहुत महंगे महंगे वस्त्र उसने पहन रखे थे और फिर वो लंबी लंबी वहां पर पड़े पड़े श्वास ले रहा था। ऐसा लगता था मानो कोई कुंजर माना हाथी यहाँ पर पड़ा हुआ हो। और उसके पास में जो कई पत्नियां थी, वे पत्नियां भी अपने पति के पास में पड़ी हुई थी। शशि प्रकाश वदना, सूर्य के प्रकाश के समान उनका मुख था, बहुत अच्छे उन्होंने आभूषण पहन रखे थे। उनकी पत्नियों के मालाओं के आभूषण कभी म्लान नहीं होते ऐसा दिख रहा है। कई पत्नियां गाते गाते थक गई है, अतएव वे एकदम थकावट के अंदर पड़ी हुई है। और तपनियानी कुंडलानी, उनके जो कुंडल है वो बहुत सुंदर सोने से बने हुए, श्रेष्ठ सोने से बने हुए है। ऐसे उस महल के अंदर हनुमान जी महाराज सबको देख रहे हैं, सब स्त्रियां सो रही हैं, अच्छे अच्छे आभूषण उन्होंने पहन रखे हैं। देखा कि कोई पत्नी गा रही थी, वीणा पर गाते 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 ऐसी नींद आई, ऐसी नींद आई कि वो वीणा है उस वीणा को लेकर के सो गई। और कोई ऐसे थे जो ये डफला बजा रही थी, डफला बजाते 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 उस डफले के ऊपर ही पड़ करके सो गई। और कोई बड़ा नगारा बजा रही थी, बहुत मोटा पटह बजा रही थी, पटह बजाते बजाते वहीं पर वो उसका सहारा लेकर के सो गई। और कोई विपंची बजा रही थी, और कोई मृदंग बजा रही थी, कोई पड़ाव बजा रही थी, कोई आडंबर बजा रही थी, ये सब अलग अलग उनके नाम हैं। इन सब को बजा बजा करके थक गए, तो उनके वो बजाने के जो है औजार वो भी वहां थे। हनुमान जी महाराज उन औजारों के पास में गए, जो आकृति में बहुत बड़े औजार थे, बहुत बड़े मृदंग वगैरह। मृदंग कहते हैं नगारे को, नगारा होता मृदंग, नगारा, नगारा भी इतना बड़ा नगारा, इसके अंदर तो सीता नहीं है। तो हनुमान जी महाराज गए और बड़े बड़े नगारों को थोड़ा सा उनको हिला के देखा कि नहीं ये तो खाली है। ऐसे उनको देख देख करके हनुमान जी महाराज विचार करते हैं। वे हनुमान जी विचार करते हैं कि भाई इनमें सीता कौन सी है, सीता कौन सी है। तो फिर उनको बिचारा एक स्त्री को देखा, एक स्त्री थी वो मंदोदरी। मंदोदरी को देखने पर उसका स्वरूप देखा, तो उसका रूप देख करके, उसके सोने का ढंग देख करके, उसके सब प्रकार से जो है भाव देख करके हनुमान जी के मन में विचार आया कि तरके अमा से सीते थी, अब मैंने सीता को देख लिया है, अब मैंने सीता को देख लिया है। वे धीरे से उसके पास में गए, जाकर के देखा कि इसका गौर मुख है और इसके अंदर उत्तम रानी के लक्षण हैं। आहा, यही सीता है। परंतु इसने खाया पिया क्या है? देखा यूं जाकर के सूंगा तो मदिरा पी रखी है, कि सीता ऐसी नहीं हो सकती। दूसरा, इसको नींद आ रही है, गहरी नींद आ रही है, सीता सो नहीं सकती। न तो सीता मदिरा पी सकती, न सीता गहरी नींद में सो सकती। इस विचार से उनका वो विचार भी जो है हट गया कि ये सीता हो सकती है। पहले जब उनको ये सीता है ऐसा विचार आया, उस समय तो हनुमान जी महाराज वहां पर इतने उछलने लगे कि ओहो, मैंने सीता को भी देख लिया, रावण को भी देख लिया, अपनी पूछ ली और चूमने से लगे थे। लेकिन जब जाकर के बहुत निकट से देखा कि भाई न तो रावण के पास में ये सो सकती हैं और न राम के बिना इनको नींद आ सकती है, न ये खा सकती है, न पी सकती है, अतः ये सीता नहीं है, चलो अपने दूसरी जगह चलो। अब हनुमान जी महाराज रावण की जो मधुशाला है, जहां पर वो मधु माने शराब की शाला, जहां पर वो शराब पीता था, वहां गए हनुमान जी। वहां शराब के जितने पात्र थे, एक एक पात्र को देखते हैं और उन पात्रों जहां शराब बनती है, ऐसे बड़े बड़े पात्र, उन पात्रों के रीते रीते पात्र, उन पात्रों के पास में हनुमान जी महाराज गए और जिनमें शराब पड़ी थी उनमें भी जाकर के देखा कि कहीं यहाँ छिपा के नहीं रख दिया हो, वहां भी देखे। तो सब जगह जाकर उन्होंने सीता को देखा। अंगना नाम सहस्रेण, यहाँ भी हजारों स्त्रियां, क्योंकि ये सब मदिरा की सेवा के लिए रखी हुई थी। रावण की पत्नियों के लिए मदिरा लाना और रावण के लिए मदिरा लाना, ये इनका काम था। वो एक एक के पास में गए हनुमान जी, जाकर उनको देखा। ये स्त्रियां भी गाने में बजाने में बड़ी प्रवीण थी, क्योंकि इनके पास भी गाने बजाने के साधन इनके पास थे। हजारों हजारों इन श्रेष्ठ स्त्रियों को देखा और देखने के बाद भी सीता जी इनको नहीं मिली, क्योंकि ये सब पान भूमि के अंदर बेसुध हुई हुई पड़ी थी। देश काल आदि का विचार करके हनुमान जी महाराज ने वापिस उस राक्षस राज रावण पर विशेषता से विचार किया कि राक्षस राज रावण के आसपास कहीं महल में या यहीं कहीं सीता होनी चाहिए। राक्षस राज रावण को देखने लगे, राक्षस राज रावण के पास की पान भूमि को देखा, फिर देखा अरे राक्षस राज के पास में एक और बड़ा भवन है, यहाँ भी चले। अब भाई वो बड़ा विचित्र भवन था, उसमें मांस पकता था, उस मांस वाले भवन में भी हनुमान जी महाराज गए। ओह, वहां पर देखो कहीं तो मोर को काटे हुए, कहीं पर मुर्गों को काटा हुआ, कहीं पर सूरों को काटा हुआ, कहीं पर और भी दूसरे जानवर काटे हुए, उन काटे हुई जगह जगह हड्डियां पड़ी, कहीं पर जो है उनमें मांस भरा पड़ा है, उस मांस के अंदर दधि सौवर चलायुतम, दही और नमक मिलाया हुआ उनमें रखा हुआ है, ऐसे जो है मांस से भरे हुए पात्रों को देखा। हनुमान जी महाराज ने हिरणों को देखा वहां, क्यों हिरण ये कटेंगे खाएंगे, और मोरों को देखा, शल्यों को देखा, क्रिकलासों को देखा, छागों को देखा, बकरों को देखा, और भी बहुत से उनको सबको देखा, भैंसों को देखा और मेंढों को देखा, और उनके द्वारा बनाई हुई कई पात्रों के अंदर चटनियां थी, उन चटनियों को देखा, कई पेय पदार्थ थे उनको देखा, और कईयों के अंदर नमक का पानी मिला हुआ और खटमिठा पानी मिला हुआ उन पात्रों को देखा, कई बड़े बड़े पात्र जो उल्टे रखे हुए थे, जो मांस के अंदर आगे काम आने वाले थे, उन पात्रों को उठा उठा के हनुमान जी महाराज ने देखा कि इन पात्रों के नीचे सीता तो नहीं है। और वहां उन्होंने जीते और मरे हुए की जब पशुओं को देखा तो हनुमान जी महाराज ने लगा कि देखो कहां हम आए हैं। मांस ही कुशल संयुक्ति पान भूमि गति पृथक, मांस का एक अलग और पान भूमि का भवन अलग। वहां सब जगह वे जाकर के देखने लगे तो भाई उनको लगा कि यहाँ की चीजें जैसी यहाँ है ऐसी चीजें और कहीं दूसरी जगह मिल नहीं सकती हैं। यहाँ भाई सुरैया है, वो सोने की बनी हुई सुरैया, पानी पीने की सुरैया और आसव पीने की सुरैयां ये सब सोने की बनी हुई है। इन सब को देख करके हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि भाई अब सीता कहाँ मिल सकती है, इन पात्रों के अंदर नहीं और इनके इन चीजों के यहाँ पर नहीं। ऐसे विचार करके हनुमान जी महाराज फिर आगे की बहुत बड़े बड़े मटके पड़े हुए थे, उन मटकों को देखा, उन मटकों में देखा कि किसी में आधा जो है मांस रखा हुआ है, किसी में आधा आधा जो है शराब रखा हुआ है, किसी में पूरा रखा हुआ है, किसी में कुछ दिन का रखा हुआ है, किसी में ताजा रखा हुआ है, क्वचित अर्धावशेषाणी, क्वचित पीतान्य शेषत है, कई खाली पड़े हैं। इस प्रकार से उन सब पात्रों को देख रहे हैं हनुमान जी महाराज, और देखते देखते वे वहां भी रहने वाले जो सैया हैं उन सैयाओं को भी देखते हैं, उन सैयाओं के नीचे आगे पीछे सब देखते हैं। फिर आगे एक बहुत बड़े वस्त्रागार में प्रवेश करते हैं जहाँ पर खूब से कपड़े हैं, उन वहाँ पुरुषों के कपड़े अलग स्त्रियों के अलग, उस वस्त्रागार में जाकर देखते हैं, वहाँ के एक एक वस्त्र को उठा उठा के देखते हैं, पर यहाँ भी कहीं सीता के कोई भी बात सीता की बात मिलती नहीं है। फिर वहाँ एक गंधशाला में जाते हैं जिसके अंदर सुगंधित पदार्थ ही पदार्थ है, वहाँ पर चंदन किसी शीतल शीतल सुगंध आ रही, गंधशाला में गए, उस गंधशाला में भी सीता की कोई जो है उनको कोई चिन्ह नहीं मिले। फिर वो स्नान करने वाली जगह पर गए, स्नान करने वाले स्थान पर भी कोई सीता का चिन्ह नहीं दिखाई दिया। ऐसे करके पुनः विमाने पुष्पके तदा वापिस उसी स्थान पर आए जहाँ पर राक्षस के घर में स्त्रियां रह रही थी, निद्रा के आवेश में पड़ी हुई थी। इन सब को देखने के बाद हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि सीता तो संभवतः शायद ही जीवित रहे, क्योंकि सब देख लिया हूं मैं, यहाँ पर मुझे बड़ी भारी शंका हो रही है इस बात की कि सीता वास्तव में है या नहीं है, है तो इस रूप में तो नहीं है, कहाँ हो सकती है। पर दारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम यह इदम खलु ममात्यर्थम धर्मलोपम करिष्यति। हनुमान जी महाराज को सीता तो दिखाई न दी, अब एक मन में बड़ी भारी शंका हो गई उनके मन में, क्यों हो मैं रहा बाल ब्रह्मचारी, मेरा कोई स्त्रियों से मतलब नहीं, मैं कभी स्त्रियों से कभी संबंध रखता नहीं, ये क्या हुआ, मैंने तो आज स्त्रियों को देखा है और स्त्रियों को देखा और उनको भी अस्त व्यस्त कपड़ों की हालत में देखा है, एक एक का मुंह देखा है, दूसरे की स्त्री को देखना ये हमारे देशों के लिए बड़ी भारी पाप की बात है, और मैंने दूसरों की एक नहीं अनेक स्त्रियों को देखा है, प्रमदा परिग्रह, परिग्रह माने संग्रह, बहुत स्त्रियों को मैंने देखा है, अब मेरी क्या बात होगी, ये तो अच्छी बात नहीं है, रावण के यहाँ पर आकर इतनी स्त्रियों का देखना मेरे जैसे के लिए ठीक नहीं है। फिर विचार आया कि नहीं नहीं मैंने स्त्रियों को नहीं देखा है, मैंने स्त्रियों को नहीं देखा, मैंने तो सीता को देखा है, मेरे मन में सीता का भाव था, उस भाव से मैंने देखा है, इन स्त्रियों को देख करके भी मेरे मन में किसी प्रकार का कोई विकृति का भाव पैदा नहीं हुआ, और जब तक मन विकृत नहीं होता है तब तक इन स्त्रियों को देखो चाहे न देखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, चाहे शुभ अवस्था में हो चाहे अशुभ अवस्था में हो, चाहे जिस रूप में भी हो, अपने मन की विकृति नहीं होना यही सबसे बड़ी पवित्रता की बात है, और यदि मन विकृत हो गया और स्त्री से दूर भी है तो भी भाई विकृत तो हो ही गया, अतएव मन के ऊपर विचार करना चाहिए, मन तो मेरा विकृत हुआ नहीं, खैर मैं तो सीता की खोज के लिए आया था, मैं सीता को स्त्रियों के बीच में ही तो देखता, क्योंकि स्त्रियों ही स्त्री सुदृश्यन्ते सदा सम परिमार्गणे, जब कोई आदमी किसी को कभी कोई आदमी किसी स्त्री को ढूंढेगा तो वो स्त्रियों में ही स्त्री को ढूंढेगा, कोई आदमी किसी पुरुष को ढूंढेगा तो वो पुरुषों के अंदर ही ढूंढेगा, इसलिए मैंने स्त्रियों के बीच में ही स्त्रियों को स्त्री को माने सीता को खोजना था वो मैंने खोजा, लेकिन मुझे तो सीता कहीं दिखाई न दी। ओहो यस्य सत्वस्य यो यो, जिस प्राणी का जो स्वरूप होता है वो अपने पास स्वतः ही खींच लेता है, जैसे स्त्रियां बैठेंगी तो स्त्रियों के बीच में ही बैठेंगी, स्वतः ही पुरुष आके बैठेंगे तो स्वतः ही पुरुषों में बैठेंगे, ये आदत है और ये अच्छी भी है, लेकिन हमारी सीता का कुछ पता नहीं है। वो स्त्री नष्ट हो गई या जीवित है इसका कुछ भी हमको पता नहीं चल रहा है। तदिदम मार्गितम तावत शुद्धेन मनसा मया रावणांत पुरम सर्वम दृश्यते नच जाने की। क्या बताएं, मैंने तो सब कुछ ढूंढ लिया, बड़े शुद्ध भाव से ढूंढा है, परंतु रावण के अंतःपुर में मुझको सीता के कहीं दर्शन नहीं हो रहे हैं। देव गंधर्व कन्याश्च, यहाँ देवताओं की कन्याएं दिख रही है, गंधर्वों की कन्याएं हैं, नागों की कन्याएं हैं, इन सबको मैंने देखा है, लेकिन मुझे जानकी जी के दर्शन नहीं हुए। हनुमान जी महाराज फिर मन में सोचते हैं कि क्या करूं, अब मेरा आगे क्या कदम होना चाहिए। इन स्त्रियों को देखकर फिर इनसे भी रावण के महल से छलांग लगा करके और उस पान भूमि को भी छोड़ करके किसी एक जगह किसी मकान पर बैठ करके सोचने लगे कि क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसी सीता मैं प्राप्त कर सकता हूं। सब मैंने लतागृह देख लिए, चित्रशालाएं देख ली, राक्षसों के घर देख लिए, नचैवताम पश्यति चारु दर्शनाम, मैं उस सीता को तो देख ही नहीं सका। हनुमान जी महाराज विचार करते हैं क्या करूं, ध्रुवम न सीता धीते यथा नमे विचिन्मतो दर्शन मेति मैथिली। ये निश्चित बात है कि सीता अभी प्राणों को धारण नहीं कर रही है, यदि सीता जीती तो मैं उसके अवश्य में वो दर्शन करता। ओहो, ये राक्षस है, बड़ा क्रूर है। इस राक्षस ने सीता को अपना बनाने के लिए प्रयत्न किया होगा, क्योंकि सीता को अपने शील की अपने धर्म की रक्षा पहले करनी थी, अतएव वह शील वती सीता अपने धर्म की रक्षा के लिए वह अपने प्राणों का त्याग कर दी होगी, और या फिर रावण ने उसको मार दिया होगा, क्योंकि रावण बड़ा पापी है। ओहो, ऐसा भी तो हो सकता है, हम लोगों को देख करके जिस प्रकार से सीता ने वस्त्र डाले थे, ऐसा विचार करके कहीं सीता ने अपने सागर को देखकर, सागर तो सीता के ससुर के भी ससुर है भाई, ससुर से भी बड़े हैं, महान है, सागर को देख करके, और जैसे कोई स्त्री अपने ससुर को देखकर विवल होती है और अपने ऊपर आई हुई आफत को देखकर वो ससुर की ओर जाती है, संभवतः सीता सागर में ही डूब गई हो, अपने ससुर को देखकर वहीं चली गई हो। वो सीता बड़ी विलक्षण थी, बड़ी श्रेष्ठ थी, वो अपने धर्म के अंदर लगी हुई थी। विरूप रूपा विकृता विवर्चसो महानना दीर्घ विरूप दर्शना, अथवा ऐसा भी हो सकता है, देखा नहीं कैसी कैसी स्त्रियां बैठी थी, इन किसी कुरूप स्त्री को दे दिया होगा रावण ने कि ले जाओ तुम इसको मार काट के ले आओ, हम इसका मांस खाएंगे, क्योंकि और तो सब मांस मैंने मांस की शाला में देखे, लेकिन वहां मनुष्य का मांस नहीं देखा, क्योंकि इन राक्षसों को मनुष्य का मांस सबसे श्रेष्ठ लगता है, अतएव सीता को मांस के लोभ से इसने खा लिया होगा। ओहो, मैं सीता को नहीं देख करके खाली हाथ ही यहाँ से चला जाऊंगा तो वे बानर मुझसे पूछेंगे कि हनुमान क्या किया तुमने, सीता का पता लगाया, तो मैं कहूंगा कि नहीं सीता तो मुझे लंका में मिली नहीं, तो वो क्या कहेंगे कि अरे मूर्ख तुमने लंका में जाकर भी सीता को नहीं देखा, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। फिर ये हम सब बानर सुग्रीव के पास जाएंगे, सुग्रीव हमको हमारी बुद्धि पर जो है डांटेगा फटकारेगा और अंत में जाकर हमको मृत्यु दंड का भागी बना देगा। ओहो, मेरे जैसा संसार में कौन मूर्ख है, रावण के अंतःपुर में आकर के भी मैं सीता के दर्शन नहीं कर पाया। ओहो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीता जो जगत की माता है वह अपनी कृपा से लोगों को दर्शन देती है, मेरे जन्म जन्मांतर के पाप देख करके, अथवा अभी भी मैंने बहुत सी स्त्रियों का मुख देखा है, इस पाप को देख करके सीता जी ने नाक मुंह सिकोड़ करके, मेरे पापों से नाक मुंह सिकोड़ करके मुझे दर्शन देना उचित नहीं समझा हो, और वो कहीं अव्यक्त रूप से छिप गई हो, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि मैं कौन सा भाई सीता के समान कोई बड़ा धर्मात्मा हूं। परंतु यदि ऐसा होता तो सबसे पहले सीता रावण से अदृश्य हो सकती थी, क्योंकि रावण जैसा तो मैं पापी नहीं हूं। इसलिए सीता मुझे जान करके दर्शन न दे ऐसी तो बात नहीं है, परंतु सीता यहाँ जीवित है इस विषय में मेरे संदेह बढ़ता जा रहा है। बांदरों के पास जाने पर बांदरों के प्राण नहीं रहेंगे, और फिर बांदरों के प्राण नहीं रहेंगे तो उन बांदरों के जो परिवार के लोग हैं वे भी मर जाएंगे, इन बांदरों के बच्चे मर जाएंगे। अरे राम, एक मेरी गलती से, एक मेरे अपराध से कितने कितने प्राणी मारे जाएंगे। ओहो, मुझे वो बूढ़े जामवंत जी सारे बांदरों में कितने प्यार से बोले थे, कैसी कैसी मेरी प्रशंसा किए थे, आज वो प्रशंसा मेरी सब धूमिल हो गई, उसके ऊपर कोई भी तो बात नहीं चल पाई। अंगद भी कहेंगे हनुमान क्या हुआ, तुम तो हमारे